आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शंघाई ताउन तंजीम सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीन के दो रोजा दौरे पर तियानचिन पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत की है। उन्होंने जंग के पुरअमन हल की खातिर भारत के वाज़ह मौकिफ को दोहराया। वज़ीर-ए-आज़म कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत की 43 खरब डॉलर की मईशत और शरह तरक्की में इजाफा इसकी इकतसादी सूरत हाल के बारे में उठाए गए सवाल का जवाब है। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश जारी रहने से मामूलात जिंदगी मुतासर हैं। और बैडमिंटन में आज रात पेरिस में BWF आलमी चैंपियनशिप में भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी मर्दों के डबल्स का सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने दो मुल्कों के दौरे के दूसरे मरहले के तहत चीन के तियानचिन पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म कल शुरू होने वाली शंघाई ताउन तंजीम की 25वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामानिगार ने बताया कि जनाब मोदी दीगर रहनुमाओं के हमराह इलाकाई सलामती, कनेक्टिविटी, पायदार तरक्की और आलमी इश्तराक जैसे मामलों पर तबादला ख्याल करेंगे। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में 20 से ज्यादा सरबराहानी ममलिकत और बैन अलाक्वामी तंजीमों के 10 रहनुमाओं के शिरकत करने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन इसमें शिरकत करने वाली सरकर्दा शख्सियात हैं। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से।
तियानचिन हवाई अड्डे पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आमद से लेकर होटल तक उनके सफर के दौरान माहौल इंतहाई पुरजोश था। होटल पहुंचने पर वहां आबाद भारतीय बिरादरी ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारों से उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर चीन की खातून फनकारों ने सितार, संतूर और तबले पर वंदे मातरम तराना पेश किया। इसके अलावा चीन के फनकारों ने भरतनाट्यम, ओडिशी और कथक रस भी पेश किए। भारतीय सकाफत के इन अलग अलग रंगों से माहौल यादगार बन गया। अपने दो रोजा दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी इलाकाई सलामती, कनेक्टिविटी, पायदार तरक्की और मेंबर ममालिक के दरमियान इश्तराक समेत अहम मामला तो तबादला ख्याल में शिरकत करेंगे। तियानचिन से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जापान का अपना दो रोजा दौरा मुकम्मल किया। कल 15वीं भारत जापान सालाना सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज टोक्यो में 16 सूबों के गवर्नरों से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने मरकज और सूबों के दरमियान ताउन की सलाहियत को उजागर किया। बातचीत के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी और जापान के उनके हम मनसब शिगिरो इशिबा बुलेट ट्रेन के जरिए मियागी सूबे में वाकई सेंडाई पहुंचे। उन्होंने टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का मुआयना किया, जो कि सेमीकंडक्टर आलात की मैन्युफैक्चरिंग का एक अहम मरकज है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जापान के अपने दौरे को निहायत सूदमंद करार देते हुए कहा कि आने वाले वक्त में भारत और जापान के दरमियान दोस्ती बुलंदियों पर पहुंचेगी। उन्होंने जनाब इशिबा को चांदी के चॉपस्टिक्स के साथ पत्थर के बने हुए प्याले पेश किए। उन्होंने उनकी अहलिया को माचिस की साइज का पश्मीना शॉल बतौर तोहफा पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान सदर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन से मुतालिक हालिया वाकयात पर अपने नुक्ते नजर का इजहार किया। जनाब मोदी ने सदर ज़ेलेंस्की का शुक्रिया अदा किया और लड़ाई के पुरअमन हल और अमन की जल्द अज जल्द बहाली की कोशिशों की हिमायत के सिलसिले में भारत के वाज़ह मौकिफ को दोहराया। जनाब मोदी ने इस सिलसिले में हर मुमकिन मदद के भारत के अज़्म का भी इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने भारत यूक्रेन दोतरफा शराकतदारी की पेशरफ्त का भी जायजा लिया और बाहमी दिलचस्पी के सभी शोबों में मजीद इश्तराक बढ़ाने के तौर तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने राब्ते में रहने से भी इत्तफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर अपने प्रोग्राम मन की बात में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 125वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। اسے اے آئی آر نیوز، ڈی ڈی نیوز، وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا۔ ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے آج کہا ہے کہ 7.8% کی ملک کی مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کی شرح ترقی کا اس کی توانائی کی کھپت پر مثبت اثر ہوگا۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جناب پوری نے اس بات کو اجاگر کیا کہ اگر معیشت فروغ پا رہی ہے تو توانائی کی کھپت میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی توانائی کی کھپت عالمی سطح سے 3 گنا زیادہ ہے اور حکومت ریفائننگ کی صلاحیت کو مضبوط کر کے اور ماحول کے لیے سازگار توانائی کی جانب منتقلی کے ذریعے اس مانگ کو پورا کرنے کی خاطر مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کی 43 خرب ڈالر کی معیشت اور جی ڈی پی کی شرح ترقی میں اضافہ اس کی معاشی صورتحال کے بارے میں اٹھائے گئے سوالات کا خود جواب ہیں۔
7.8% واز دی ریٹ آف گروتھ آف جی ڈی پی ان دا لاسٹ کوارٹر اور اس کے پہلے والے کوارٹر میں 7.4% تھی۔ اف یو لک ایٹ دی اوور آل ایکٹیویٹی، دنیا کی انرجی کنزمپشن جو بھی ہے، بھارت کی انرجی کنزمپشن اس سے 3 گنا زیادہ ہے۔
بھارت کی اصل مجموعی گھریلو پیداوار جی ڈی پی کے موجودہ مالی برس میں اپریل سے جون تک کی پہلی سہ ماہی میں 7.8% کی شرح سے ترقی کرنے کا تخمینہ ہے۔ گزشتہ مالی برس میں پہلی سہ ماہی میں جی ڈی پی کی شرح ترقی 6.5% رہی تھی، جبکہ چوتھی سہ ماہی میں 7.4% رہی۔ کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اصلاحات اور لچک پر مبنی ترقی کا ایک عالمی انجن ہے۔
بھارت ایک ایسا ابھرتا ہوا دیش ہے جس میں اپارچونیٹیز اتنی بڑی ماترا میں بڑھنے والی آگے آنے والے دنوں میں، یورپین یونین ہو، ایف ٹی اے کا، سعودی عربیہ کے ساتھ بھی چرچائیں چل رہی ہے، وہ تو چاہتے ہیں 6 کے 6 کھاڑی کے دیش ایف ٹی اے میں ایک ساتھ آ جائیں۔ پوری دنیا آج آپ کے ساتھ ویاپار بڑھانا چاہتی ہے۔ یہ بھارت کے نرنائک نیتروتو میں ہے، یہ جادو آپ سب کے سامرتھ میں، آپ کی قابلیت میں ہے۔
یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے آج کہا کہ لوک سبھا کے اندر منصوبہ بند طریقے سے تعطل پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جو جمہوریت کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کا منصوبہ بند تعطل راجیہ سبھا اور ریاستی اسمبلیوں میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ بھونیشور میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے جناب برلا نے کہا کہ سیاسی پارٹیوں کے خیالات اور آرا مختلف ہوں گی، اسی طرح حکمراں اور اپوزیشن پارٹیوں کے رہنما مختلف معاملات پر اتفاق اور اختلاف کر سکتے ہیں، تاہم پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں میں منصوبہ بند طریقے سے تعطل پیدا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ عوام نے ارکان کو بڑی امیدوں اور توقعات کے ساتھ منتخب کر کے بھیجا ہے۔ لوک سبھا کے اسپیکر گزشتہ مانسون اجلاس کا حوالہ دے رہے تھے، جہاں لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں ہی ایوانوں میں رکاوٹوں کی وجہ سے بمشکل چند گھنٹے ہی کام ہو سکا۔ جناب برلا نے کہا کہ اختلاف رائے ہمیشہ جمہوریت کو مستحکم کرتا ہے اور ایوان کے اندر اس کی اجازت دی جانی چاہیے۔ انہوں نے پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں میں بحث و مباحثے اور ارکان کے رویے کے گرتے ہوئے معیار پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے حالیہ مانسون اجلاس میں استعمال ہونے والی زبان اور ارکان کے رویے پر بھی ناراضگی ظاہر کی اور کہا کہ یہ پارلیمنٹ کے وقار کے مطابق نہیں تھے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج نوئیڈا میں ڈرون تیار کرنے والی ایک کمپنی اور انجن کی آزمائش کے ایک مرکز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ موجودہ دور میں ڈرونز جدید جنگی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہیں۔ جناب سنگھ نے دفاع کے شعبے میں آتم نربھر بھارت کے تصور کو مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے اس خطے میں 5,000 سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ آپریشن سندور عزم، حوصلے اور سائنسی ترقی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہ صرف بھارتی سپاہیوں کی بہادری کا ثبوت ہے بلکہ آتم نربھر بھارت کی سائنسی اور اختراعی صلاحیت کا مظہر بھی ہے۔
بھارت اب تکنیکی درشٹی سے کسی بھی دیش سے پیچھے نہیں ہے، ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में भी हम सब ने देखा, जब संकल्प, साहस और विज्ञान जब तीनों एक साथ मिलते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता। और ऑपरेशन सिंदूर अगर एक तरफ हमारे सेना के जवानों की वीरता की कहानी है, तो वहीं दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत और हमारे वैज्ञानिकों और युवाओं के इनोवेशन यानी नवाचार की भी कहानी है।
वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी मुल्क सिर्फ असलहा और मालूमात के तालमेल से ही ताकतवर बनता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश दिफाई साजो सामान की पैदावार में एक नुमाया रोल अदा कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णो ने आज उत्तर प्रदेश के नोएडा में मोबाइल फोन के लिए भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग मरकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि गुजश्ता 11 बरस में भारत में इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग में 6 गुना इजाफा हुआ है और इसकी पैदावारी मालियत 11.5 लाख करोड़ रूपये, बरामदात 3 लाख करोड़ रूपये से ज्यादा पहुंच गई है। इससे 25 लाख लोगों के लिए रोजगार के बिलवास्ता मौके पैदा हुए हैं। हुकूमत ने टेक्सटाइल बरामदकारों को राहत फराहम करने के लिए एडवांस एथोराइजेशन स्कीम के तहत बरामदाती मसनूआत की लाजमी शर्त की मुद्दत में तौसी करते हुए इसे 6 महीने से 18 महीने कर दिया है। बरामदाती मसनूआत की शरायत में ये तौसी उन मसनूआत के लिए है जो केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स महकमे की जानिब से जारी करदा लाजमी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स के तहत आती हैं। टेक्सटाइल की वजारत ने एक बयान में कहा कि इस इकदाम से हाथ से तैयार किए जाने वाले कपड़े और तकनीकी टेक्सटाइल के बरामदकारों को बरवक्त और निहायत जरूरी राहत मिलेगी। इससे कारोबार करने में आसानी पैदा होगी और भारतीय मसनूआत की मुसाबकती सलाहियत में भी इजाफा होगा। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने आज साहली कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में कहीं कहीं शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। हिमाचल प्रदेश में कल तक, उत्तराखंड में मंगल तक और मुल्क के शिमाल मगरबी हिस्से में आइंदा 5 रोज के दौरान कहीं कहीं शदीद बारिश जारी रहने का भी इम्कान है। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल संगीन है। रावी, ब्यास और सतलुज दरियाओं में पहाड़ी इलाकों से पानी के तेज बहाव और रियासत के कुछ हिस्सों में बारिश से सैलाब ज़दा अजला में लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। भारतीय फौज, फिजाइया, BSF, NDRF, SDRF, पंजाब पुलिस और रजाकार तंजीमें 24 घंटे 7 दिन फंसे हुए लोगों को बाहिफाजत निकालने और इमदादी सामान फराहम करने के लिए जंगी पैमाने पर काम कर रही हैं। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 रोज तक पंजाब के कुछ हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश की वार्निंग दी है। आलमी सेहत तंजीम WHO ने लड़ाई, गुर्बत और आबो हवा की तब्दीली से मुतालिक आफात के सबब आलमी सतह पर हैजे के मामलात में शदीद इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। इस साल जनवरी से अगस्त के वस्त तक 31 ममालिक से 4,09,000 से ज्यादा मामलात और 4,738 अमवात की खबर मौसूल हुई है। मशरकी बहर रोम खत्ते से सबसे ज्यादा मामला दर्ज किए गए हैं जबकि अफ्रीकी खत्ते में सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं। WHO ने इस बात को उजागर किया कि खासतौर से सैलाब जदा इलाकों और बेघर अफराद की साफ सुथरे पानी, सफाई सुथराई और सेहत की देखभाल तक महदूद रसाई इस बहरान में इजाफा कर रही है। बैडमिंटन में आज रात पेरिस में BWF आलमी चैंपियनशिप में मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का चीन के चेन बोइंग और लियो यी से मुकाबला होगा। क्वार्टर फाइनल मैच में आलमी नंबर 9 की भारतीय जोड़ी ने दूसरे दर्जे की मलेशिया की जोड़ी को 21-12, 21-19 से हरा दिया। सात्विक और चिराग ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर तारीख रकम की है क्योंकि वो BWF आलमी चैंपियनशिप में 2 तमगे जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बन गए हैं। उन्होंने 2022 में कांसे का तमगा जीता था। अहमदाबाद में 25वें दौलत मुश्तरका सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत 13 तमगों के साथ सरे फहरिस्त रहा जिसमें सोने के 4, चांदी के 6 और कांसे के 3 तमगे शामिल हैं। भारतीय वेट लिफ्टर्स ने आखिरी दिन 2 तमगे हासिल किए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी शंघाई तआवुन तंजीम सरबरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीन के दूरोजा दौरे पर तियानचिन पहुंच गए हैं। वजीर आजम मोदी ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत की। उन्होंने जंग के पुरअमन हल की खातिर भारत के वाज़ेह मौकिफ को दोहराया। वजीर आजम कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्याल का इजहार करेंगे। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत के 43 खरब डॉलर की मईशत और शरह तरक्की में इजाफा इसकी इकतसादी सूरत हाल के बारे में उठाए गए सवाल का जवाब है। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश जारी रहने से मामूलात जिंदगी मुतासर हैं। और बैडमिंटन में आज रात पेरिस में BWF आलमी चैंपियनशिप में भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी मर्दों के डबल्स का सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।